Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Sonu Sood.
धन्यवाद लालिमा. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. रोज की तरह हम देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजारों पर नजर डालेंगे और प्रमुख समाचारों पर चर्चा भी करेंगे. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ प्रकाश चावला. प्रकाश जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
नमस्कार.
और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजा डांग.
थैंक्स सोनू. यस फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस. वेल, डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस एंड विद गेन्स टुडे. सेंसेक्स सोर्स 540 पॉइंट्स, निफ्टी 50 सेटल्स एट 25,220. मेजर एशियन मार्केट्स क्लोज हायर आफ्टर यूएस अनाउंसेस ट्रेड डील्स विद जापान एंड फिलीपींस. एंड इंडिया टू रिमेन फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी विद 6.5% जीडीपी ग्रोथ इन 2025, सेज द एशियन डेवलपमेंट बैंक.
प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज बढ़त में रहे. सेंसेक्स 540 अंकों की तेजी में रहा. निफ्टी 25,220 पर हुआ बंद. अमेरिका द्वारा जापान और फिलीपींस के साथ व्यापार समझौतों की घोषणा के बाद प्रमुख एशियाई बाजारों में तेजी. और वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद में 6.5% वृद्धि के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा, कहा एशियाई विकास बैंक ने. शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से. भारतीय शेयर बाजारों में आज तेजी का रुख रहा. जापान द्वारा अमेरिका के साथ व्यापार समझौता सुनिश्चित कर लेने के बाद एशियाई बाजारों में बढ़त आ गई और यही रुख भारतीय बाजार में भी दिखाई दिया. बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.66% की तेजी से 540 अंकों की छलांग लगाते हुए 82,727 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.6% की वृद्धि से 159 अंक बढ़कर 25,220 पर बंद हुआ. विस्तारित बाजार पर नजर डालें तो यहां भी बढ़त का रुख था, हालांकि तुलनात्मक रूप से तेजी कुछ कम थी. बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.2% से अधिक बढ़त दर्ज हुई और स्मॉल कैप सूचकांक 0.05% की मामूली बढ़त में रहा.
Indian equity benchmark indices ended higher today following a positive trend in the Asian markets after Japan secured a trade deal with the US. The BSE Sensex soared 540 points or 0.66% to close at 82,727 points. The 50-share NSE 50 gained 159 points or 0.60% to settle at 25,220 points. The broader market indices at the BSE closed higher. The mid-cap index gained over 0.2% and the small-cap index added 0.05%.
सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 23 में आज बढ़त दर्ज हुई. टाटा मोटर्स 2.5%, भारतीय एयरटेल 2% और बजाज फाइनेंस का शेयर 1.7% बढ़त के साथ सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयर थे. सबसे अधिक गिरने वाले शेयरों में 1.2% गिरावट के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर था. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और अल्ट्रा टेक सीमेंट प्रत्येक में 0.7% की गिरावट आई.
Well, in the sectoral indices at the BSE, 17 out of 21 sectors ended up. Among the top gainers, telecommunications surged 1.14%, auto climbed 0.86% and BankEx increased 0.75%. In the top laggards, realty dipped 2.60%, FMCG slipped 0.46% and capital goods fell 0.31%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2025 companies declined, shares of 2005 companies advanced, while shares of 168 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 71 companies hit their 52-week high, while 25 hit their 52-week low.
रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 4 पैसे कमजोर होकर 86.41 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में तेजी के साथ 97.44 पर था. प्रकाश जी, क्या कहेंगे आप, आज के कारोबार में मजबूती के साथ खुला था आज बाजार और पूरा दिन हमने एक अपवर्ड ट्रेंड देखा. सो क्या लगता है आपको, बाजार की जो ये हमने तेजी देखी है आज और इस सप्ताह, उसके क्या आपको कारण दिखाई देते हैं?
जो आज की तेजी है उसका प्रमुख कारण जो ये डील साइन हुई है अमेरिका और जापान के बीच में, वो सुबह से ही कैटलिस्ट बना हुआ था। तो अगर आप सारे ग्लोबल मार्केट्स को ट्रैक करें सुबह से ही, मॉर्निंग में जब एशियन मार्केट्स खुलती हैं तो ग्रीन ही ग्रीन था हर जगह, और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हो रही थी। मतलब एज इफ इन्वेस्टर्स जो है वो एक इस न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे। तो वो एक डोमिनो इम्पैक्ट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो एक पॉजिटिव डोमिनो इम्पैक्ट हुआ और खूब लोगों ने खरीदारी करी जम के और माहौल पॉजिटिव बना। और उसी का ये भी है कि अभी अभी शायद अमेरिका खुलने वाला होगा, अभी अमेरिका में भी फ्यूचर्स अच्छे ओपन हुए हैं, डाउ जोन्स, यूरोप इज डूइंग वेल, एशिया डिड वेल, सो डिड वी डू वेल।
तो जापान आपको लगता है एक बहुत मेजर कंट्री है, मेजर इकोनॉमी है, उसके साथ डील हुई है, क्या ये अभी दो कहा जा सकता है कि इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो बाजारों को इम्पैक्ट कर रहे हैं? एक तो ट्रेड डील्स का जो भी प्रोस्पेक्ट होता है या जो भी प्रोग्रेस होता है, एंड दूसरा जो कॉरपोरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं।
देखिए जापान जो है ना, ये अमेरिका जापान ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में शुमार है। ठीक है जी। अब जब दो इकोनॉमीज में बीच में टसल चल रहा था, जब से ये सो कॉल्ड जो ट्रंप साहब बोलते हैं कि अमेरिका का लिबरेशन डे हुआ था अप्रैल 2 को, तब से उठा पटक चल रही थी मार्केट्स में, मार्केट्स परेशान थी, इंडस्ट्री वालों को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जा रहा है ये पूरा रुख ग्लोबल ट्रेड का, ये सारी एक परेशानियां थी, कंसर्न्स थे, चिंताएं थी मार्केट को। तो अब उसका जो निदान भी तो निकलना चाहिए था, तो निदान जो है जब वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज जो आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं, तो जाहिर बात है कि उसका अच्छा संकेत जाता है कि अब ये जो कहीं ना कहीं ये सारा चीज अब सुलझ जाएगा। तो जो कंसर्न थे ट्रंप टैरिफ वार को लेके, वो काफी हद तक सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में पॉजिटिव चीज इन्वेस्टर्स को लगती है और हम सबको लगनी चाहिए। ट्रेड तो ग्लोबल इकोनॉमी का व्हील है, उसके बिना ग्लोबल इकोनॉमी कैसे चलेगी?
अपार्ट फ्रॉम द डील बिटवीन द यूएस एंड जापान, डू यू थिंक दैट द ग्लोबल मार्केट्स हैव नाउ बिकम इम्यून टू द टैरिफ वॉर और द टैरिफ फियर, एंड इट्स काइंड ऑफ इट्स बिकम इम्यून टू इट एंड स्टेबलाइज्ड? डू यू थिंक सो? बिकॉज आफ्टर पोस्ट 20th जैन इट्स द वर्ल्ड व्हेन द वर्ल्ड मार्केट्स वेंट थ्रू टर्मोइल, गोइंग अप डाउन, ईच अटरेंस ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप यू नो हैड अ डोमिनो इफेक्ट, रिपल इफेक्ट ऑन द मार्केट्स, बट नाउ नोइंग दैट ओके दिस इज गोइंग टू हैपन एंड इट्स काइंड ऑफ स्टेबलाइज्ड, and I mean, how would you see that?
No, markets can never be immune to a particular thing. No, markets are not. Markets react very fast. What markets don't like is uncertainty. Mm-hmm. Markets hate uncertainty. Mm-hmm. And you refer to it's the turmoil really began on April 2nd.
Yes.
And things went haywire. I mean, naturally, industry, trade, business, nobody knew. It had impact on the job markets, it had impact on the global demand, consumption demand, among the American consumers, exporters, they were all worried. So markets can never be immune to it. Hmm. But what has happened is, through this deal, is that a certain indication, signal has gone that things are moving back to, there's a greater optimism now, there's hope that things will get settled. You said stability. So there's a hope of stability, and the first positive or first kind of a major visible sign is this deal. Of course, there has been one deal earlier with the UK US deal, but that was not as big deal as US Japan. Mm-hmm. So it's a big signal, big measurable thing that yes, we are moving towards stability in global trade.
Mm-hmm. All right, let's move on. All right. Well, U.S. President Donald Trump has announced a long-awaited trade agreement with Japan. As part of the deal, U.S. importers will pay 15% reciprocal tariffs on Japanese goods exported to the United States. U.S. President said that U.S. and Japan just completed a massive deal, perhaps the largest deal ever made. Mr. Trump said Japan will also invest $550 billion into the United States. He added that the U.S. will receive 90% of the profits. Now, Japan will open their country to trade, including cars and trucks, rice and certain other agricultural products and other things. United States and the Philippines also concluded a trade deal last night after U.S. President met his Philippine counterpart Ferdinand Marcos Jr. at the White House. Mr. Trump said, as per the deal, the Philippines is going to open its market with the United States. That was more on the deal between the U.S. and Japan.
बस एक आपकी ब्रीफ सी टिप्पणी जो 15% आपको लगता है कि एक रीजनेबल टैरिफ है और वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है सेंटिमेंट बूस्ट करने के लिए.
हाँ जी, बिकॉज 15 एक्चुअली एक सेटल हो गई ना फिगर सेटल
जी
हो गई.
जी
25 बोली जा रही थी ना
जी,
तो 25 से 15 तो काफी गिरावट है और इससे दोनों मुल्कों को फायदा हो रहा है. और अब यूं देखिए ना कि ग्लोबल इकोनॉमीज के दो बड़े प्लेयर्स जब उनमें ट्रेड नॉर्मलाइज धीरे धीरे होने लगेगा, जो इंडस्ट्रीज हैं सरकारें तो डील कर लेती हैं, भुगतना किनको पड़ता है, जो ट्रेडर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, अब उनको मालूम है एक फ्रेमवर्क तय हो गया, अब हमको एडजस्ट होना है. सर्टेनिटी उस हद तक आ गई
जी.
तो 15% ठीक ठाक है दोनों, अभी तक तो ठीक ठाक नजर आया. उनका जो रिएक्शन आया है जापान का भी और अमेरिका की, खुश नजर आ रहे हैं. वक्त देखते हैं कैसे पैन आउट करते हैं.
राइट. वेल, द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी इज ऑन रूट टू द यूनाइटेड किंगडम ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू फर्दर स्ट्रेंथन द इंडिया यूके बायलैटरल रिलेशंस. स्पीकिंग टू आकाशवाणी कॉरेस्पॉन्डेंट इन लंडन, इंडियाज हाई कमिश्नर टू द यूके विक्रम कुमार दोरायस्वामी सेड दैट द अपकमिंग विजिट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ कंट्रीज. ही एडेड दैट अ फ्यूचर अग्रीमेंट ऑन फ्री ट्रेड मे ऑल्सो be signed and that would have a positive impact on both economies. Here's more from our correspondent.
Calling it an ambitious document, Mr. Doraiswamy said that the free trade agreement would build a new partnership more focused on futuristic stuff.
The free trade agreement, we are working to finalize it. It is of course a detailed and ambitious document to date. As and when it lands, the free trade agreement would have, we believe, very important impact upon on both economies. It will help drive growth in both countries. It will give businesses a more predictable framework, not only to carry out trade, it's also about improving the terms of trade. In other words, the processes by which trade is carried out. It includes customs arrangements on rules of origin. It includes government procurement. And of course, there is a huge and very important set of areas covered under services, which is a significant segment of both the British and the Indian economy.
The signing of the FTA would not only strengthen bilateral economic ties, but may also serve as a major factor for India to have more such agreements with other developed countries in future. Rajesh Bali, Akashwani News, London.
So Prakash ji, UK is the sixth largest investor in India, and India is also, interestingly, a major investor in the UK with nearly $20 billion in cumulative FDI. What do you see, where do you see this FTA going, and how will it, once the quote-unquote legal scrubbing is done with, how does it impact the two economies?
Well, the big lesson from the tariff, recent tariff war, or still is that countries need to diversify their trading partners.
Yes.
They need to strengthen their diversification. They need not depend only on a few major. So we need, and UK, mind you, is a very important economy for us, and we are very important partners for them. So it's because it also acts as a big hedge, big cushion against any, because okay, if one partner is not, there are a few others with us. India has signed several agreements. So this is another one, such agreement. And this is going to be very important because there are two things. One is the broader impact of it, as you said, because it will really push us, push our exports and strategic partnership with UK. The other is sectoral impact. This deal is going to be very good for our textiles, for gems and jewelry,
Leather footwear, clothing.
Yes, because our exports to the UK will be more competitive, mm-hmm. because the duty impact will almost be negligible.
So it's very interesting that tariffs are a bahut ek major aspect hai is agreement.
Kyunki kya hota hai ki jab hum koi cheez export karte hain, wahan land karti hai, agar usme maan lijiye 25% aapne tariff laga diya, aapne yahan se shirt bana ke bheji $4 ki या $10 की आपने शर्ट बना के भेजी और उस पर 25% आपने 15% वहां टैरिफ लगा दिया, तो वो उसकी लैंडेड कॉस्ट हो गई कितनी, 10 प्लस 25%. अगर वो 25% हटा दी जाए तो लैंडेड कॉस्ट विल कम डाउन, तो वहां हमारा जो शर्ट है वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, वो जो प्रोडक्ट बांग्लादेश से आ रहा था बाकी डेस्टिनेशन उसके बनस्पत अच्छा कम्पीट कर पाएगी. तो जाहिर बात है जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी बहुत एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सेक्टर्स है, उसमें हमारे कारीगर होते हैं जो फाइनेस्ट ज्वेलरी के माहिर होते हैं, वो बनाते हैं. अगर सूरत जैसे है, इस जैसे सेंटर्स में अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं आते तो बड़ी प्रॉब्लम होती है. अब एक्सपोर्ट ऑर्डर अच्छे आएंगे क्योंकि हमारा जो जेम्स एंड ज्वेलरी का जो वहाँ डिमांड है, मार्केट है, बढ़ जाएगी. और यूके माइंड यू एंटायर यूरोप में जेम्स एंड ज्वेलरी बड़े अच्छी डिमांड रहती है. तो उसके बदले में अच्छा फिर गिव एंड टेक होता है, कुछ चीज हम अपनी मार्केट खोलेंगे कुछ वो हमें देंगे. और एक और चीज है जो हमारे हाई कमिश्नर ने भी हाईलाइट किया है कि इंडिया इज अ वेरी स्ट्रांग प्लेयर इन सर्विसेज. आई मीन बाय सर्विसेज नॉट ओनली आईटी सर्विसेज, आवर अकाउंटेंट्स, आवर प्रोफेशनल्स, आवर आर्किटेक्ट्स, आवर नर्सेज, होल लॉट ऑफ. तो क्या होता था कि इनको वीजा प्रॉब्लम होती है और वहां पे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से आए दिन कोई ना कोई दिक्कत रहती. तो अब ये जो एग्रीमेंट है इसके तहत व्हाट इज हैपनिंग इज दैट दे गोइंग टू फॉर्म पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट. इंडियन प्रोफेशनल्स लाइक अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स आर गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देम. वो दोबारा से एग्जाम नहीं देना पड़ेगा उनको, हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, वो हम उनको रिकॉग्नाइज करें. तो हमारे क्योंकि हमारे पास अबंडेंट सप्लाई है स्किल्ड मैन पावर की, क्वालिफाइड मैन पावर की, अकाउंटेंट्स की, प्रोफेशनल्स की. सो इट ओपन्स अ न्यू एरिया फॉर अस. दैट टू दैट एक्सटेंट इज दिस डील FTA with the UK is really good.
And energy security also is a very important and high on the agenda.
Well, I think there the renewable energy is going to be impacted positively because the people all over the world, there's a way forward towards renewable energy.
Yes.
India as also in UK or even rest of Europe. Mm-hmm. So I think naturally, if you pave the way, industry will take care.
It also paves the way for India-Maldives FTA agreement, which is also on the anvil.
On a, it's going to be on a much smaller scale.
Yes.
But then it's good, more the merrier.
Yes, yes.
In fact, ye bahut time se chal raha tha is pe baatcheet, and finally it is really seeing, you know, amli jama pehnaya ja raha hai is agreement
abhi
ko.
Hamara...
Aur comprehensive strategic agreement bhi hui 2021 mein UK ke saath. So definitely ye last decade bahut hi fruitful.
ये यूके के साथ करना इतना मुश्किल नहीं होता जैसे अब हमारे को मुश्किल होती है यूरोप के साथ करना, क्योंकि यूरोप में 28 कंट्रीज हैं, मेंबर्स हैं. तो वहाँ एग्रीमेंट हमारे यहाँ अगर एफटीए होता है तो हमारे लेजिस्लेटिव अप्रूवल नहीं चाहिए होती एफटीए को हमारे यहाँ. यूरोप में रेटिफिकेशन चाहिए उनके इंडिविजुअल पार्लियामेंट, वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है. यूके क्योंकि वो वाला दिक्कत नहीं है तो ठीक से होगा, हो रहा है. और वहाँ की सरकार, वहाँ भी जो नई सरकार आई तो उनको भी एक दे आर ऑल्सो डेस्परेट टू बूस्ट देयर इकोनॉमी. दे ऑल्सो वॉन्ट टू कुशन देयर इकोनॉमी अगेंस्ट दिस टफ टैरिफ वॉर.
यस.
सो दे ऑल्सो आर लुकिंग फॉर कुशंस. वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर सेम काइंड ऑफ ए ट्रेड सिक्योरिटी. व्हाई नॉट.
अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर, जहां अगेन ट्रेड डील्स बहुत आज डोमिनेंट रही. अमेरिका की जापान और फिलीपींस के साथ व्यापार समझौते की घोषणा के बाद प्रमुख एशियाई बाजारों में आज बढ़त का रुख था. जापान का निकेई सूचकांक 3.39 के उछाल में रहा. हांगकांग के हैंगसेंग में 1.6% वृद्धि दर्ज हुई. सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.54% की बढ़त पर बंद हुआ. दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.43% बढ़त आई और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। यूरोपीय क्षेत्र पर नजर डालें तो दिन के कारोबार में यहां तेजी का रुख था। अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 1.15% के उछाल पर था, जर्मनी का डैक्स 0.66% की वृद्धि पर था और लंदन के फुटसी में 0.5% की तेजी थी। तो 1 अगस्त में अब एक सप्ताह रह गया, सो ये सप्ताह बहुत ही ट्रेड डील्स के लिए एक इम्पोर्टेंट सप्ताह होने वाला है यूएस के साथ बाकी देशों।
एक्चुअली क्या है, इस तरह की डेडलाइन बड़ी आई पहले, ठीक है, हमारे ऊपर भी है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील भी होनी है। 1 अगस्त की ट्रम्प साहब ने डेडलाइन दे रखी है सब पूरे वर्ल्ड को, कर लो वरना मैं ये कर दूंगा, वरना ट्रेड टैरिफ बढ़ा दूंगा। तो अब क्या है कि ये कोई आसान काम नहीं होता ना, हमने पहले भी जिक्र किया है, ट्रेड डील करना इज नॉट साइनिंग ऑन अ फ्यू पेपर्स, आइटम बाय आइटम उसका इम्पैक्ट देखा जाता है, पढ़ा जाता है। यू हैव टू सी हाउ इज गोइंग टू इम्पैक्ट माई इंडस्ट्री, माई सेक्टर्स, माई एग्रीकल्चर, माई इकोनॉमी, माई मैन्युफैक्चरिंग, एवरीथिंग इज इम्पैक्टेड। सो टू दैट एक्सटेंट यू नीड फुल स्केल प्रिपरेशन एंड दैट टेक्स टाइम एंड यू कांट इम्पोज दिस काइंड ऑफ हेडलाइन ऑन समबडी। सो देर आर ऑलरेडी इंडिकेशन सिग्नल्स फ्रॉम आवर गवर्नमेंट that deadline, yes, we, but that deadline cannot be imposed to an extent that we do a half kind of a thing. Our priority should be is that how do we protect our different sectors, and that is why even this government has been signaling, our Indian government, yes, senior ministers have been signaling,
yes,
for us, our
Our agriculture, farmers,
mm-hmm. others, manufacturing, mm-hmm. we need to look after the interest of all these sectors.
Absolutely.
So you cannot kind of impose a deadline on us.
Yes.
So it anyways, it is coming. So negotiations are taking place. And what if it gets delayed for a few weeks? Nothing great damage is going to happen.
Right.
We have seen this kind of uncertainty. At least now, the way forward looks clear.
Yes, yes. All right.
Yes.
I look at the U.S. markets now. Well, the major U.S. stock indices ended mixed yesterday as investors digested a wave of corporate earnings while keeping a close eye on U.S. tariff negotiations ahead of the August 1 deadline. The S&P 500 edged up 0.06% to close at a record high of 6,310 points, driven by gains in select large cap stocks. The Dow Jones Industrial Average also rose 0.40% to finish at 44,502, while the Nasdaq Composite slipped 0.39% to 20,893, weighed down by declines in tech shares. Prakashit, after the passing of the one big beautiful bill into law on July the 4th, it is being said that this law will add $3.4 trillion to the U.S. And President Trump thinks that the tariffs will also make up for the shortfall in revenue. How do you see the U.S. economy going in the light of all this?
Well, this bill has been controversial because it would add debt to the U.S. government. It would add debt to the U.S. What figure you refer to is the debt,
mm-hmm.
net debt.
Mm-hmm.
So, but then Trump is hoping that to a large extent it will be made up by the impact, because when you impose tariff, you get custom duty realization.
Mm-hmm.
So to that extent, how it plays out is not going to be easy to judge at this point of time. So basically, for the rest of the world, what matters is that what kind of stability is brought back, as you referred in your earlier remarks,
uh-huh.
that the world, the global markets are looking towards stability in the system.
Right.
लेते हैं अगली खबर। एशियाई विकास बैंक ने कहा कि वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद में 6.5% वृद्धि और वर्ष 2026 में 6.7% वृद्धि के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। एशियाई डेवलपमेंट बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि ग्रोथ आउटलुक को समर्थन मिल रहा है मजबूत डोमेस्टिक डिमांड से, एक सामान्य मॉनसून से और आरबीआई द्वारा अपनी मौद्रिक नीति को ढील देने से। कटौती करने से अपने नीतिगत दरों में। इस महीने की शुरुआत में भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.4 से 6.7% के बीच रहने का अनुमान लगाया था, जिससे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी स्थिति और मजबूत हो गई। सो अब क्या कहेंगे, ये जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो वैलिडेशन मिल रही है कि भारत की मजबूती बनी रहेगी, सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनी रहेगी, और इसमें जो रीजंस दिए गए हैं डोमेस्टिक डिमांड, मॉनसून, मॉनेटरी ईजिंग, आपको लगता है कि ये आगे के जो डेकेड है उसमें हम आशा कर सकते हैं कि जो भी टारगेट सेट किए हैं, तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था तो हम बनी चुके हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर जो हमारा सफर है वो लगता है आपको कि स्मूथ रहेगा?
देखिए जी, जो एडीबी का असेसमेंट है वो इस साल का और अगले साल का है। इस साल का जो ये साल चल रहा है उसमें 6.5 और अगले साल का 6.7% ग्रोथ का असेसमेंट है, और ये बिल्कुल सही है कि हम लोग उस रेट पर हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेंगे। तो अगर आपने तीसरे नंबर से पांचवें नंबर पे तीसरे पे आना है तो तेज तो दौड़ लगानी पड़ेगी। तो ये 6.7 क्या आप 7 तक भी पहुंच सकते हैं अगर ये सब ट्रेड का जो झमेला है ये खत्म हो जाए, ये और सब चीज जियोपॉलिटिकल कंसर्न थोड़े कम हो जाए, और ये से हमारा जो आपको मॉनसून अच्छी क्या मॉनसून बड़ी अच्छी इस बारी, कुछ तो फ्लड भी आ रहे हैं और मॉनसून का स्प्रेड बड़ा अच्छा है। मतलब पहले होता था कहीं बारिश हो रही है कहीं सूखा पड़ रहा है, अब आम तौर पे मॉनसून हर जगह हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट खाली एग्रीकल्चर पे नहीं पड़ता, एंटायर चेन ऑफ इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर,
डिमांड पे भी,
फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, टू व्हीलर्स, ट्रांसपोर्ट सेक्टर,
इन्फ्लेशन हैज आल्सो बीन लो एट 2.5%,
क्योंकि फिर आपका कमोडिटी प्राइसेस भी कम होते हैं।
जी जी,
बढ़े कमोडिटीज की ओर, उन्होंने कमोडिटीज की बात की तो क्रूड ऑयल पे नजर डालें।
सर्टेनली, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन फॉर द फोर्थ स्ट्रेट सेशन टुडे एज इन्वेस्टर्स वेड रीसेंट ट्रेड डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग अ न्यू यूएस टैरिफ अग्रीमेंट विद जापान। ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग 0.70% डाउन एट $68.11, व्हाइल डब्ल्यूटीआई क्रूड वाज 0.72% डाउन एट $64.84 पर बैरल व्हेन रिपोर्ट्स लास्ट केम इन। And look at the gold and silver price as well. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.08% up at 1,900 rupees per 10 grams, and silver was also trading 0.70% up at 1,16,680 rupees per kilogram a short while ago.
Udhar multi commodity exchange mein taza samachar milne tak August anubandh wala sona 0.17% vriddhi ke saath 1,500 rupees prati 10 gram par pahunch गया था। सितंबर अनुबंध वाली चांदी भी 0.57% की तेजी से 1,16,315 रुपए प्रति किलो पर थी। ये जो हम सोने चांदी में अद्भुत तेजी देख रहे हैं, इस ये क्या संकेत दे रहा है?
एक कारण है इसके पीछे जो हलचल रही, सेफ हेवन माना जाता है ना सोना, कि जब कुछ नहीं आफ्टर ऑल कोई प्रॉब्लम आएगी तो सोना आपको सेव कर लेगा। तो सेफ हेवन हमारे आपके लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स के लिए भी सेफ बैंक सेफ हेवन चाहिए। तो बाइंग बहुत ज्यादा सेंट्रल बैंक से आ रही है, नॉट ओनली हमारा सेंट्रल बैंक, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स जो है वो अपनी डिमांड कंटिन्यू रखे हुए हैं, चालू रखे हुए हैं कि सेफ हेवन के लिए सोना बड़ी चीज है। तभी तो जब आप डॉलर इंडेक्स की जिक्र करते हैं तो डॉलर इंडेक्स नीचे या ऊपर चलता है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश जी, आप आए और इतने विभिन्न विषयों पर हमें बहुमूल्य जानकारी दी।
मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया।
एंड फ्रेंड्स, बिफोर वी क्लोज, हियर्स अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस एंड विद गेन्स टुडे। सेंसेक्स सोर्स 540 पॉइंट्स, निफ्टी 50 सेटल्स एट 25,220। Major Asian markets close higher after US announces trade deals with Japan and Philippines. And India to remain fastest growing major economy with 6.5% GDP growth in 2025, says the Asian Development Bank. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Sonu Sood, signing off. So for now, it's Namaskar. Market Mantra.